संघ का 22वां अध्याय। अध्याय का शीर्षक है कृष्ण द्वारा अविवाहिता गोपियों का चीरहरण। तो और इस अध्याय के जो है अभी तक 20 श्लोक जो है चर्चा किए जा चुके हैं विगत 3 दिनों में और 4 दिनों में, और आज जो है हम लोग 21वें श्लोक से जो है क्रम को आगे बढ़ाएंगे, प्रयास करेंगे आगे जाने का। बोर्ड पर जो है 22वां श्लोक जो है लिखा हुआ है, क्योंकि उसका प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा जो है विस्तृत तात्पर्य है। और तो हम 21वां श्लोक पढ़ते हैं, आप सुनिए और उसका अनुवाद सुनिए, तत्पश्चात हम 22वें श्लोक का जो है सामूहिक रूप से उच्चारण करेंगे। तास्तथा वन्ता दृष्ट्वा भगवान् देवकी सुतः वासां सिताभ्या प्रायच्छत् करुणास्ते न तोषिताय। अनुवाद इस प्रकार से है, शब्दार्थ अनुवाद में तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभात के द्वारा श्रील प्रभात के एवं श्रील प्रभात के शिष्यों के द्वारा तात्पर्य है। अनुवाद, उन्हें इस प्रकार नमस्कार करते देखकर देवकी पुत्र भगवान ने उन पर करुणा करके तथा उनके कार्य से संतुष्ट होकर उनके वस्त्र लौटा दिए। और उसके पश्चात आज का ये श्लोक 22वां श्लोक आप हमारे पीछे पीछे उच्चारण कीजिए। दृढ़ाम प्रलब्धास्त्रापया चाह पिता प्रस्तोभिता क्रीडान्वक्षक्रे कारिता वस्त्राणि चैवा प्रतानि अथापि अमुम् तानाभ्याया सूयन् प्रियासङ्गनिर्वृता। अनुवाद सुनिए, अनुवाद में तात्पर्य, यद्यपि गोपियां बुरी तरह ठगी जा चुकी थी, उन्हें उनके शीर संकोच से वंचित किया जा चुका था, उन्हें कठपुतलियों की तरह नचाया गया था और उनका मजाक उड़ाया गया था, और यद्यपि उनके वस्त्र चुराए गए थे किंतु उनके मन में कृष्ण के प्रति रंज भर भी शत्रु भाव नहीं आया, उल्टे वे अपने प्रिय के सानिध्य का यह अवसर पाकर हर्षित थी। तात्पर्य, शिल प्रभात की टीका है, गोपियों के इस मनोभाव का वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हुआ है, जब वे प्रार्थना करते हैं, हे भगवान कृष्ण, आप चाहे मेरा आलिंगन करें या अपने पैरों के नीचे रौंद डालें या मेरे समक्ष कभी भी उपस्थित न होकर मेरे हृदय को तोड़ दें, आप जो चाहें सो करें कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, किंतु इतना सब करने पर भी आप सदैव मेरे स्वामी हैं, मेरा कोई दूजा आराध्य नहीं है। कृष्ण के प्रति गोपियों का यही मनोभाव है। श्री राधा रजगन भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री गौर निताई की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जगद्गुरु शिल प्रभात की। तो अभी तो 22वां श्लोक पहुंच चुका है। आप में से कितने भक्त हैं जो रेगुलरली सुन रहे हैं, ये 4-5 दिन से सुन रहे हैं? ठीक है, ऐसा करते हैं, रिवीजन करते हैं क्विज के माध्यम से। ठीक है, आसान प्रश्न है, घबराइए मत। ठीक है, ओके, पहला सवाल बहुत आसान सवाल, ये बताइए कि ये जो व्रत गोपियां रख रही हैं, व्रत का नाम है कात्यायनी व्रत, ये सवाल नहीं है, सवाल ये है ये कौन से महीने में रखा गया, कौन बताएगा? शरद के, कार्तिक के बाद। मार्ग शीर्ष इज ऑल्सो नोन एज हेमंत, बिल्कुल सही जवाब। अरे बोल, ठीक है ठीक है, बिल्कुल मार्ग शीर्ष हेमंत महीना, ठीक है बिल्कुल सही जवाब। ओके अच्छा, ऐसे ना सारा रिविजन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, बहुत आसान सवाल, ठीक है, ये गोपियां विवाहित है कि अविवाहित है? कितने लोग कह रहे हैं विवाहित है? नहीं, ये देखिए हाथ खड़ा है, आप क्लास में नहीं, आप जवाब कैसे दे सकते हैं? कितने लोग कहते हैं अविवाहित है? हाँ गोपियां अविवाहित है अभी। चैप्टर का नाम ही यही है, कृष्ण द्वारा अविवाहिता गोपियों का चिरहरण। तो विवाहित कैसे हो सकते हैं? ठीक है अच्छा, ठीक है ठीक है, खत्म। अच्छा तीसरा सवाल ये बताइए, इस अध्याय में, इस अध्याय को किसने कृष्णा बुक में पढ़ा है? किस किसने कृष्णा बुक ने, सब ने इस अध्याय को पढ़ा है। अच्छा ठीक है, अच्छा अब तो बताइए इस इस अध्याय में अभी तक जो भी श्लोक हुआ है इसमें राधा रानी का वर्णन आया है? एग्जैक्टली नहीं आया, श्लोक में नहीं आया, परपट में आया है। ओके परपट में आया है, ठीक है। किस रिलेशन में आया? हाँ दैट इज जस्ट दैट इज जस्ट अ मेंशन, हाँ इनवाइट किया गया। पर मजे की बात यह है, इस चीरहरण में जो है वे जो गोपियां थी उसमें राधा रानी नहीं थी। अच्छा जी हाँ, ये कहीं पे भी नहीं बताया गया, इसलिए मैंने पूछा। अगर आप कृष्णा बुक पढ़ेंगे एंटायर कृष्णा बुक, इस चैप्टर में राधा रानी का नाम कहीं नहीं आता। पूर्ववर्ती आचार्य खासतौर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के हिसाब से जब चीरहरण हुआ था उस चीरहरण में राधा रानी नहीं थी, ये वो गोपियां ही नहीं थी जिनका चीरहरण जो है भगवान ने किया जिसमें राधा रानी। आप लोगों को क्या लगता है राधा रानी का चीरहरण हो जाएगा राधा रानी चुप बैठ जाएंगी उसके बाद, ऐसे हाथ जोड़ के आ जाएंगी, हां जी मन मन में बहुत मुस्कुरा रही, राधा रानी का भाव क्या है? इट्स कॉमन सेंस, राधा रानी का चीरन हो जाएगी, राधा रानी के साथ ललिता होगी, शाखा ये सब होंगे और राधा रानी का चीरन हो जाएगी, हो जाएगा और उसके बाद कृष्ण बच जाएंगे। कभी कृष्ण का चीरन सुना है? सुना है कभी? नहीं है ना, वो इसलिए नहीं है क्योंकि राधा रानी का चीरन नहीं हो, वरना कृष्ण के साथ वो जरूर होती वो लीला। इट्स कॉमन सेंस, द फर्स्ट वर्स इटसेल्फ सेज, इसीलिए टाइटल ही इटसेल्फ है अविवाहित गोपियां। तो है ना, तो ये जो लीला है इसमें जो गोपियां है, आचार्यगण पूर्ववर्ती आचार्यगण बताते हैं कि ये जो गोपियां थी कुछ कृपासित गोपियां थी इसके अंदर, एक गोपी का स्पेसिफिकली नाम आता है धन्या, और इसके अलावा जो गोपियां थी वो दो कैटेगरीज में आती हैं। एक जो जब नर नारायण ऋषि को जो है की तपस्या भंग करने के लिए जो है देवताओं ने जो अप्सराएं भेजी थी, उन अप्सराओं को जब नारायण ने जो है आशीर्वाद दिया था कि ठीक है आपको जो है मेरे साथ जो है रमण करने का अवसर मिलेगा, तो ये वो अप्सराएं थी, वो कन्वर्टेड इनटू गोपीज, दे आर ऑल साधन सिद्ध गोपीज, अभी ये सब साधन सिद्ध गोपीज है। तो ये और दूसरी थी जो रामचंद्र ने जो है जिन ऋषियों को, नैमिषारण्य के ऋषियों को जो आशीर्वाद दिया, तो ये मुनिचारी गोपी। हमने सुना है कई प्रकार की गोपियां हैं, पर कई प्रकार की गोपियों का वर्णन कई अलग अलग जगह पे आता है। तो ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर में, इस अध्याय में जो गोपियां हैं वो ये दोनों कैटेगरीज की गोपी है, इसमें राधा रानी और राधा रानी की अष्टकिया नहीं थी, नहीं थी। ठीक है, सो खैर यहां जैसे ठीक है। अच्छा अच्छा, अगला सवाल कॉमन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ये चीरहरण जहां पे हुआ था उस जगह का नाम क्या है? अरे चीरघाट में सोच सोच क्यों बोल रहे हैं? चीरघाट जगह का नाम चीरघाट है, ठीक है। और ये स्थान कहां पे है? ऑब्वियसली घाट तो यमुना के पास ही होगा, बहुत कम है। कहाँ है ये स्थान, कहाँ है जी? नहीं, ये वृंदावन में नहीं है, ये वृंदावन से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर एक जगह चीरघाट नाम से एक जगह है, स्यारो नाम से गांव है, वहां है। जब हम शेरगढ़ से मुड़ते हैं, हम लोग हमें से कोई कई भक्त लोग गए हैं, दैट इज द ओरिजिनल चीरघाट। जी गोस्वामी के मुताबिक जो है दैट चीर, जो चीरघाट है ओरिजिनल जहां पर लीला हुई थी, ये वृंदावन में जो जगह वृंदावन जो है वृंदावन से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है दिल्ली की तरफ। जब आप दिल्ली से जाते हैं आप कोसी क्रॉस करते हैं, उसके बाद शेरगढ़ आते हैं, शेरगढ़ के लिए लेफ्ट टर्न लेते हैं, तो वहां से जो है रामघाट होते हुए चीरघाट, रामघाट, रामघाट, अक्षयवट, चीरघाट, नंदघाट, ये चार घाट एक लाइन से आते हैं। तो ये ऐसे, तो ये घाट उधर है। जो आप वृंदावन में जो सो कॉल्ड आप चीर घाट देखते हैं, उसका नाम चीर घाट नहीं है, उसका नाम शयन, उसका नाम छयन घाट है। केशी को मारने के बाद जो है भगवान ने वहां विश्राम किया था, दैट इज मिस्टुक एज चीर घाट। ठीक है, द चीर घाट इज अब बहुत ऊपर है, चीर घाट बहुत कम लोग जानते हैं, जाते हैं कि जाना बहुत अंदर की तरफ है। खैर ठीक है, क्वेश्चन आंसर यही समाप्त करो, और क्वेश्चन पूछे ना वो क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ओके फाइन। तो यहां जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं, प्रभुपाद के प्रभुपाद ही बता रहे हैं, क्योंकि ये टीका जो है प्रभुपाद की है, ये वाली जो टीका है, तो गोपियों का जो है मनोभाव का जो है वर्णन कर रहे हैं और महाप्रभु का उल्लेख कर रहे हैं। और महाप्रभु के शिक्षाष्टम का आखिरी जो श्लोक है आश्लेष पादरतम निष्ठुम, उसका जो है वर्णन कर रहे हैं। तो क्योंकि इससे अभी एक दो श्लोक पहले काल जैसे मुरली कृष्ण प्रभु ने जो है चर्चा की कि गोपियों का जो है गोपियां जो है सब यमुना से जो है बाहर निकल गए हैं और भगवान श्री कृष्ण के पास एक एक करके पहुंचे और सबने जो है अपने अपने वस्त्र प्राप्त किए। ये जब ये वाली जो लीला सुनते हैं तो चीरहरण की वैसे तो बहुत कम चर्चा होती है, पर क्या प्रार्थना करनी चाहिए इस लीला को सुनने के बाद? चलिए दोबारा क्वेश्चन, क्या प्रार्थना करनी चाहिए? हाँ, वेरी क्लोज, वेरी गुड। प्रभु जी बता रहे हैं कि जैसे कहते हैं ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे भगवान ने जो है उनके वस्त्र हरे, उस तरीके से जो भगवान जो है हमारे अनर्थ हर लें। तो आचार्यगण बताते हैं, इससे बिल्कुल मिलता जुलता ही है, तो आचार्यगण बताते हैं कि प्रार्थना जो है इस अध्याय को सुनने के बाद या उस अध्याय को पढ़ते हुए यही प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे भगवान ने गोपियों का चीरहरण किया वैसे हमारा चीरहरण करें। यानी कि जैसे उनका वस्त्र हरा वैसे हमारे वस्त्र, हमारे कौन से वस्त्र हैं? हमारा शरीर, तुम्हारा शरीर हर ले ताकि जो है हम मुक्त हों, इस यहां से निकले, हम सेवा में जाएं। तो ये गोपियों का जो चीरहरण किया, तो गोपियों का चीरहरण के बाद जो है उनका शरीर हरने की कोई आवश्यकता नहीं, उनके शरीर और आत्मा ही की है, क्योंकि वो साधन सिद्ध गोपियां हैं। जो सिद्ध है वो सिद्ध व्यक्ति का शरीर और आत्मा जो एक ही होता है, और आत्मा जो है टेक्निकली स्पीकिंग कपड़े पहनती नहीं है, कपड़े शरीर के लिए होते हैं। तो एनीवे, तो यहां जैसे बताया गया, तो ये इस प्रकार से आगे और भी लीलाएं देखेंगे आप। इसके बाद 28वें श्लोक तक जो है ये वर्णन चलेगा अभी वस्त्रण लीला का। उसके बाद जो है फिर वृंदावन के जो है वृंदावन की जो सुंदरता है, खासतौर पर वृंदावन के जो वृक्षों की सुंदरता है, तो उनका वर्णन आएगा इसके बाद। तो सारे ही रसों का जो है, मतलब शांत रस में जो भक्त हैं उनका गुणगान करेंगे भगवान स्वयं। तो 28वें श्लोक तक जो है इस तरीके से ही ये चलेगा। देखिए अब देखिए क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। परिधाय स्ववासांसी पृष्ठ संगमा सज्जिता गृहित गृहित्ता चित्ता नोचेलो तस्मिन् लज्जा याति केशना। गोपियां अपने प्रिय कृष्ण से मिलने के लिए आतुर थीं, अतएव वे उनके द्वारा मोह ली गईं। इस तरह अपने अपने वस्त्र पहन लेने के बाद भी वे हिली डुली नहीं, लज्जावश वे उन्हीं पर टकटकी लगाए जहां की तहां खड़ी रही। लज्जावश वे उन्हीं पर टकटकी लगाए जहां की तहां खड़ी रही। तात्पर्य, ये पूरा तात्पर्य जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती का तात्पर्य एज इट इज। अपने प्रिय मित्र कृष्ण से मिलने से गोपियां उनके प्रति और अधिक अनुरक्त हो गईं। जिस तरह कृष्ण ने उनके वस्त्र चुरा लिए थे, उसी तरह उन्होंने उनके मन और प्रेम भी हर लिए थे। गोपियों ने इस घटना को इसका प्रमाण मान लिया कि कृष्णा भी उनके प्रति अनुरक्त हैं, अन्यथा वे उनसे इस तरह का खेल करने का कष्ट क्यों करते। उन्होंने सोचा कि अब कृष्णा हम पर अनुरक्त हैं, अतएव उन्होंने लज्जायुक्त निगाहों से उन्हें देखा और भावमय प्रेम की उठान के कारण वे जहां पर खड़ी थी वहां से टस से मस ना हो सके। कृष्ण ने उनकी लज्जा हर ली थी और उन्हें निवस्त्र ही जल से बाहर निकलने के लिए बाध्य कर दिया था, किंतु अब पुनः अपने वस्त्रों से सज्जित हो जाने के बाद उनके समक्ष उन्हें लाज आ रही थी। वस्तुतः इस घटना से कृष्ण के समक्ष उनमें विनयशीलता बढ़ गई थी। वे नहीं चाहती थीं कि कृष्ण उन्हें घूर घूर कर देखें, इसलिए उन्होंने ही भगवान को देखने के अवसर का सावधानी से उपयोग किया। बहुत टेढ़ा बरबट है। अब ये बता रहे हैं कि जो गोपियां हैं, ऑब्वियसली वो निवस्त्र थी और वो पानी से निकल के आई, यमुना से निकल के आई और फिर उनको वस्त्र मिल गए। तो जब ऑब्वियस बात है, जब यमुना से निकल के आई तो फिर शर्म खत्म हो जानी चाहिए। अब ये कह रहे हो भी गई, क्योंकि भगवान ने उनकी शर्म, मतलब उनकी जो लज्जा है वो ले ली। अच्छा, ले ली, ठीक है। अब कह रहे हैं अब वस्त्र दे दिए, अब वस्त्र पहन लिए, वस्त्र पहनने के बाद दोबारा लज्जा आई, ये क्या चक्कर है। है ना। फिर आगे बता रहे हैं और देखिए, वो ये नहीं चाहती थी कि कृष्णा उन्हें घूर घूर कर देखें, ठीक है, इसलिए उन्होंने ही भगवान को देखने का अवसर सावधानी से उपयोग किया। यही क्या मतलब है, भगवान उनको घूर घूर के, वो ये नहीं चाहते कि वो उनको घूर घूर के देखा जाए, तो वो खुद वहां क्यों खड़ी रही। पूरा परपट ही टेढ़ा है ना। परपट इसलिए टेढ़ा है क्योंकि कृष्ण लीला जो है रूप गोस्वामी के हिसाब से टेढ़ी ही है। अहे रेवा गति ही प्रेमना राज्ञा कुटिलो स्वभाव कुटिलो भवेत। रूप गोस्वामी बता रहे हैं इसमें वक्त रसामृत सिंधु में, अहे रेवा गति, जो प्रेम की चाल होती है वो अहे, अहे का मतलब सांप की तरह होती, टेढ़ी गति, और गति भी वैसी होती है, कभी बहुत धीरे कभी बहुत तेज। प्रेम ना राग गया स्वभाव, तो इसलिए प्रेम का जो है, प्रेम राग का जो स्वभाव है कुटिलो भवे, तो इसलिए जो उसका स्वभाव जो कुटिल स्वभाव बताया जाता है। तो यहां जैसे शुरुआत में ही बता रहे हैं कि गोपियों ने जो है इस प्रकार से प्रमाण मान लिया था कि कृष्ण भी उनके प्रति अनुरक्त थे। क्यों? क्योंकि इसका जो पिछला अध्याय है, जैसे कृष्ण जी अपने प्रवचन में बता रहे थे कि पिछली बार जब हमने चर्चा की थी पिछले जन्माष्टमी के पूर्व संध्या पर वेणुगीत, तो वेणुगीत में क्या था, वेणुगीत में जो है भगवान का और गोपियों का दोनों का जो है पूर्व राग, यानी कि मिलन से पहले का जो भाव होता है वो जागृत। पूर्व राग कैसे समझाएं आपको, पूर्व राग का मतलब होता है, अब मैं कोई भी एग्जांपल दूंगा तो वो मटेरियल होगा, पर दैट इज द क्लोजेस्ट वी कैन गेट। पूर्व राग का मतलब होता है जैसे जब कोई एक लड़का लड़की को पहली बार देखता है ना, तो क्या होता है, अभी तो लड़के जो है इतने ना लड़के ना लड़कियां, ना कोई इतनी आर्टिस्टिक होती हैं, ना सुरीली होती हैं, ठीक है, ना पोएटिक होती हैं, तो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कोई पिक्चर का गाना ही गा देते हैं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा है कुछ भी उल्टा सीधा गाना, वाहियात सा कोई गाना गा देते हैं, ठीक है। तो पर उसका मतलब क्या है कि अभी कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ नहीं है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है ना। अभी अभी ना प्रपोज हुआ है ना डिस्पोज हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी तो अभी जस्ट पसंद पसंद आए हैं, जस्ट देखा देखा है या सुना सुना है। तो ऐसे जो स्टेज है, इस स्टेज को पूर्व राग कहते हैं, ऐसे स्टेज को, मिलने से पहले की स्टेज को, जब उसके बारे में पता होता है। तो ऑब्वियसली अनजान जब बंदा है, अगर एक दूसरे को नहीं जानते, मालूम ही नहीं एक दूसरे के बारे में, तो पूर्व राग नहीं हो सकता, ठीक है। तो इग्नोरेंस में कोई राग उत्पन्न नहीं हो सकता, तो वो अलग बात है। तो इस तरीके से तो ऐसा और हुआ गया, होता हुआ क्या था कि जब ऐसे भगवान जो है, जब रूप गोस्वामी बताते हैं कि भगवान के अंदर जब ये लीला है, भौम लीला है, इसमें जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती बात का भी है, जैसे उस दिन भक्ति माधुरी गोविंद महाराज जी बता रहे थे कि डेढ़ गुना, यानी कि जो वयस, यानी जो जो उम्र होती है, जो उम्र जो होती है इस लीला में, भौम लीला में, तो उसके मुताबिक जो लीला होती है वो उसके डेढ़ गुना आगे की लीला होती है, डेढ़ गुना आगे की लीला होती है। जैसे मान लीजिए अगर उम्र है 8 साल, तो एक्चुअल लीला जो है वो 12 साल के मुताबिक की लीला करेंगे। तो इस तरीके से तो ये ग्रोथ इस तरीके से होती है। ग्रोथ का मतलब सिर्फ फिजिकल बॉडीली ग्रोथ नहीं है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी ऐसे ही होता है। जो महापुरुष होते हैं तो उनका ग्रोथ जो है अपने उम्र के हिसाब से बहुत जल्दी होता है, जिसको हम जीनियस कहते हैं। जीनियस का मतलब ये कि अपने उम्र से, अपनी काबिलियत से कहीं आगे जो सोच सकता है, कर सकता है। तो इस तरीके से तो जब भगवान श्री कृष्ण जो है, तो उनके अंदर भी जो है वो सारे लक्षण जो है प्रकट होने लगते हैं। और जब फिर भगवान एक लीला आती है फिर, कि भगवान जो है, जैसे प्रभु जी बताते कि प्रैक्टिस करते हैं बांसुरी बजाने की, तो बांसुरी बजाने की प्रैक्टिस हो जाती है। तो बांसुरी बजाने की प्रैक्टिस के बाद जो है, अब जब फाइनल हो जाता है कि ठीक है बांसुरी बजाएंगे, तो फिर तैयार होकर भगवान जो है बांसुरी बजाने जाते हैं गोपियों के लिए। सबके लिए बांसुरी बजा के देख चुके होते पहले, ओके। अब जो गोपियों के लिए बांसुरी बजाने जाते हैं, रूप गोस्वामी बात बताते हैं, तो भगवान सब तैयार पूरे रिहर्सल करके आए थे, खड़े होते हैं त्रिभंग मुद्रा में, बांसुरी पकड़ते हैं। गोपियां दूर होती हैं, दूर से जा रही होती हैं, ऐसा नहीं कि भगवान अभी सामने खड़े होकर जाते, दूर से भगवान भी दूर है, गोपियां भी दूर है। भगवान देख रहे हैं कि बांसुरी से क्या 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 असर होगा, देखता हूं। खड़े होते हैं, बांसुरी बजाते हैं, यानी कि बांसुरी बजाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अब ऐसा मत बोलिए हमको बांसुरी बजानी आती है तो पता नहीं क्या करना पड़ता है। बांसुरी बजाने के लिए कॉमन सेंस, सबसे पहले फूक मारनी पड़ती है। फूक मारनी पड़ती है, तो भगवान जो है फूक मारते हैं दोबारा मारते हैं, फिर मारते हैं, तो चक्कर क्या है, आवाज क्यों नहीं आ रही। तो जब आंखें खोलते हैं, क्योंकि फूक आंख बंद करके मारी होती, आंखें खोलते हैं तो देखते हैं बांसुरी गिर चुकी है उनके पैरों में, और भगवान के हाथ कांप रहे हैं, पसीना छूट रहा है, और खड़ा होना दोबर हो रहा है। तो रूप गोस्वामी बात कर रहे हैं कि ऐसी फूंक जिसमें आवाज नहीं निकली, भगवान का इस ऐसी फूंक की जय जयकार हो। तो इस तरीके से जो है भगवान जो है बांसुरी बजाने का जो है मतलब पुरजोर कोशिश करते हैं कि चलो जी बांसुरी बजाया जाए गोपियों के लिए, ठीक है। तो अब इसके बाद जब गोपियां फाइनली, जब ये लीला घटित हो गई जैसे इस वक्त, और इस लीला के बाद जो है अब गोपियां भी जो है कृष्ण के बारे में सोचना शुरू करती हैं। तो सारी गोपियां जैसे इकट्ठे तपस्या करी होती, अच्छा तपस्या जहां करी है गोपियों ने, उस जगह का नाम, वो जगह चीरघाट नहीं है, वो फिर चीरघाट से और 1 किलोमीटर पहले पड़ता है, उस जगह का नाम है तपोवन, जगह का नाम ही तपोवन है। ये चीरघाट जो है वो 30वें दिन आखिरी दिन आई थी, 30वें दिन आखिरी दिन, जो मतलब 1 महीना पूरा हुआ था तो आखिरी दिन था, उस दिन आई थी गोपियां वहां पे स्नान करने के लिए, अवाभृत स्नान आएगा यहाँ पर्पट में। अवाभृत स्नान का मतलब होता है जब कोई संस्कार पूरा होता है, संस्कार पूरा होने के बाद जो अवाभृत स्नान किया जाता है, तो वो स्नान के लिए आए थे। तो पहले तपोवन में तो खैर, तो ये अब गोपियां जब अब ये भगवान को से मिली, फिर देखा भगवान को इन्होंने भी, अब सारे गोपियां इकट्ठे बैठ के जस्ट सोचती थी भगवान को लेके। तो एक दिन जो है एक गोपी कुछ कर रही थी, क्या कर रही थी बाद में बताएंगे, कुछ कर रही थी, कुछ करने के बाद देखा एक गोपी बेहोश हो गई, दूसरी गोपी आई, उसने भी देखा कि वो क्या कर रही थी, उसने देखा वो भी बेहोश हो गई, तीसरी गोपी आई, उसने देखा ये क्या कर रही थी, देखो कि इसका काम मैं पूरा कर देती हूं, वो बेहोश हो गई। ऐसा करके जितने भी गोपियां आई थोड़ी देर में सब बेहोश हो गई, कर क्या रही थी। ये भगवान को प्रेम पत्र लिखने की कोशिश कर रही थी और पहला शब्द लिखा था मतलब शुभकामनाएं, बस शुभकामना से आगे नहीं लिख पाए, सब एक एक करके धराशायी। फिर गोपियां फाइनली जो भी था जैसे भी था, दूसरी फिर एक दोबारा कोशिश की, होश में आई, फिर एक गोपी ने जो है कोई बात नहीं लिखने के टाइम देखा कि क्या हो रहा है, लिखने की कोशिश की तो धराशायी हो गए, कोई बात नहीं काम करते हैं, सिर्फ लिखना ही एक तरीका नहीं है, दूसरा तरीका है भगवान को याद करने का, चलिए भगवान की जो है पेंटिंग बनाते हैं। ब्रश उठाया, कलर लगाया और फिर कैनवस पे ब्रश, चलने से पहले हाथ, वो खुद पेंटिंग बन गई, पेंटिंग बनाने वाली पेंटिंग बन गई। सो ये बहुत अलग जगह है, ये सब बहुत अलग जगह है, ये शायरी नहीं है, ये कविता नहीं है, ये अटैचमेंट है। इसके बाद जब रात को गोपियों को बुलाया गया, रात को भगवान ने इनको वरदान दिया कि हां मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, अंदर वज दिस रासलीला। तो गोपियां जो है रात को निकली सब, और रास्ता वही जैसे प्रेम है, टेढ़ा मेढ़ा सांप जैसा रास्ता, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, परेशान होगी गोपियां, कहते क्या यार रात है दिखाई भी नहीं दे रहा अंधेरे में, ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। तो चांद जो है खेल गया, रास्ता दिख जाए, भागने लगी, जल्दी जल्दी चलो लेट ना हो जाए, बहुत दूर जाना है। श्री गोपी ने बोल दिया, अरे ये चांद चमक गया इतनी तेज, ये दिखाई तो पकड़ी जाएंगी सारी, ऐसे भाग रही रात में यहां से। तो राधा रानी ने जो है एक बार टेढ़ा देखा चांद को, चांद बुझ गया। ये अलग है, अलग जगह। अब भागे, सब भाग रहे थे, राधा रानी भागी, राधा रानी भागी, अब दो तीन कदम भागी, राधा रानी के हाथ में क्या होता है, राधा रानी के हाथ में मोरपंख थोड़ी होता है, अभी क्या है कमल, नील कमल होता है राधा रानी के हाथ में, ब्लू लोटस। नील कमल क्यों होता है हाँ, तो ये कृष्ण का कलर है, राधा रानी के वस्त्र के कौन से कलर के हैं? होते हैं जनरली, क्यों होते हैं भगवान के वस्त्र का कलर क्या होता है जनरली, क्यों? क्योंकि वो राधा रानी के कलर से मैच करता है। जीव गोस्वामी बताते ना उसमें युगलाष्टकम में, नीलांबर धरो राधा पीतांबर धरो हरि, जीवन है निधन है नित्यम राधा कृष्ण का तीर मम। तो अच्छा जो भी है, तो अब हाथ में वो था, दो तीन कदम भागने के बाद जो है फेंक दिया उसको। क्यों फेंक दिया? अरे भाई भारी है ना, देखो जल्दी भागना है। और दो चार कदम भागे, अब गजरा फेंक दिया। क्यों? भारी है। और दो पांच कदम भागे, अब गले में नेकलेस, मणि वाली लॉकेट। तो गजरा वजरा तो ऐसे ही आ जाता है, बीन मान के बन जाता है। अब इसका क्या करें? फेंक दी, ये भारी है। और आगे भागे, हाथ में बहुमूल्य आभूषण कंगन, फेंक दिए। और हल्की होगी, और भागे, अब कोई आभूषण नहीं है शरीर पर। अब क्या लगा? बस शरीर को तो खींचे जाना पड़ेगा लेके, ये बहुत भारी है। है कोई इस दुनिया में ऐसा प्रेम करने वाला? शरीर छोड़ के भागे, रादर इस भौतिक जगत में जब कोई मिलने जाता है तो कैसे जाता है? सबसे ज्यादा तैयार होके, जो कपड़े उसने आज तक कभी नहीं पहने आज पहनता है, जो मेकअप आज तक नहीं किया वो करता है, भले ही उसमें वो भूत है या भूतनी लग रहा हूं ठीक है। आ भक्त, तो ये बिल्कुल अलग जगह थे, अलग जगह थे। फिर सब बताते हैं कि ये सारी गोपियां बैठ के जो है, राधा अन्य सारी गोपियां बैठ के जो है चर्चा करते हैं। फिर एक बार ये गोपियां जो है आके कृष्ण को बता रही है राधा रानी के बारे में, कि राधा रानी के साथ क्या होता है, एक बार क्या हुआ, बताने कि आपके बारे में जो है राधा रानी को सपना आया। सपना आया, हम वहीं थी, हम देख रहे थे, सपना आया। अब सपना क्या आया वो तो राधा रानी जाने, पर असर दिखाई दे रहा था, मुस्कुरा रही थी, बहुत मुस्कुरा रही थी। और मुस्कुराते मुस्कुराते अचानक क्या हुआ, पलंग से गिर पड़ी और ऐसे ही गिरी, फिर उठी नहीं। हम पलंग से गिरते तो क्या होता है, नींद खुल जाती है कि नहीं खुली फिर राधा रानी फिर बाद में जगी, जब बाद में फिर बात हुई तो राधा रानी बोल रही थी कि गोपियों को बता रही थी, गोपियां ये कृष्ण को बता रही थी कि जब भगवान मेरे सामने खड़े होते हैं और जब भगवान मेरे सामने खड़े होके बोलते हैं, एक ही बात है नहीं, हाँ नहीं पता नहीं एक बात नहीं है, दो बात है, एक है खड़े होते हैं और एक है खड़े होके बोलते हैं। तो दो बात, इसमें क्या बड़ी बात है? अब आदमी सामने खड़ा होगा तो बोलेगा इसे वो प्रॉब्लम उनको नहीं है, प्रॉब्लम मेरी है, राधा रानी बता रही। वो ये है कि जब वो खड़े होते हैं तो क्या मेरी सारी इंद्रियां, जितनी भी इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, जितनी इंद्रियां हैं, ये आंखें बन जाती हैं? और जब वो जब बोलते हैं तो मेरे सारी इंद्रियां कान बन जाते हैं, तो ये ड्यूअल रोल जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। या मैं सारे इंद्रियों से भगवान के दर्शन करूं कि सारे इंद्रियों से भगवान को सुनूं, आम सॉरी भगवान को नहीं कृष्ण को। तो ये फिर राधा रानी बोलती है कि अरे अब जब मैं ऐसे भगवान को सॉरी कृष्ण को देखती हूं तो मुझे किसी की याद आती है। भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए राधा रानी को किसी और की याद आती है, कमाल है, आती है। उस व्यक्ति का नाम है ब्रह्मा और उसे याद आती है। और मैं सोचती हूं कि जब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, कोई भी इंसान भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करता है, उसकी सारी इंद्रियां आंखें क्यों नहीं बन जाती? जब कोई भी उनके बारे में सुनता है तो उसके सारे इंद्रियां कान क्यों नहीं बन जाते? जब कोई भी उनके बारे में बोलता है तो उनकी सारी इंद्रियां मुंह क्यों नहीं बन जाती? इसका मतलब ब्रह्मा को क्रिएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसको क्रिएशन करना ही नहीं आया आज तक। उसकी इंद्रिया फंक्शन करनी चाहिए ना अलग तरीके से। सो इट्स अ डिफरेंट थिंग। कोई यहां तक नहीं जाएगा। तो फिर राधा रानी बोलती है कृष्ण के बारे में कि ये कृष्ण से जो है, जब मैं कृष्ण से दूर होती हूं, मैं कृष्ण के सम्मुख नहीं होती, कृष्ण मेरे सम्मुख नहीं होते तो ये ज्यादा अच्छा होता है। है पागल हो गई है क्या? नहीं, इसलिए क्योंकि जब कृष्ण मेरे सम्मुख होते हैं तो एक ही कृष्ण होते हैं, पर जब कृष्ण मेरे सम्मुख नहीं होते हैं तो मेरी पूरी दुनिया कृष्ण से भर जाती है। मुझे हर जगह कृष्ण दिखाई देते हैं। देयर इज ओनली वन कृष्णा एंड देन इज कृष्णास। तो ये बिल्कुल एक अलग ही चीजें हैं सब। राधा रानी से कृष्ण मिलने जाते हैं एक दिन रात को, अब भगवान की बारी, और बिल्कुल घर घर तक पहुंच जाते हैं। सेम है ना, कई मूवीज बनी हैं ऐसी, है ना, रात को घर तक पहुंच जाते हैं। भगवान जब घुसते हैं, भगवान ने बहुत आभूषण पहने होते हैं ऑब्वियसली, और बहुत सुंदर जो मधुर मधुर झंकार हो रही होती है, चिंग 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 चिंग, भगवान चल रहे। भगवान को एक और मधुर झंकार सुनाई देती है, वो भी आभूषणों की, जैसे कि किसी ने छोटे 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 शंख के बने हुए आभूषण डाले हुए, इसके भी आवाज आती है, टिक 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 टिक। भगवान कहते हैं अब आई, अब आई, अब आई। दरवाजा खोल, टक, धड़ाम दरवाजा खुलता है, कौन है? अरे भागो जाती है। भगवान बेचारे पेड़ पे चढ़ जाते, पूरी रात पेड़ पे बैठे थे, राधा रानी आती नहीं है। तो ये एक अलग प्रकार का रस है जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। आगे ऐसे पढ़ेंगे, देखिए क्या होता है। तासाम विघ्नाय भगवान स्वपाद स्पर्श कामयया धृतावृतानां संकल्पम आहादामोदर बला। भगवान उन गोपियों के द्वारा किए जा रहे कठोर व्रत के संकल्प को समझ गए। वे यह भी जान गए कि ये बालाएं उनके चरण कमलों का स्पर्श करना चाहती हैं। अतः भगवान दामोदर कृष्ण उनसे इस प्रकार बोले। तो ये देखिए, तो ये जो गोपियां वहां खड़ी हैं, अब पता चल रहा है क्यों खड़ी हैं। वो इसलिए खड़ी हैं कि वो भगवान के चरणों का स्पर्श करना चाहते हैं। इससे पहले जब ये श्लोक से पहले पिछले श्लोक में जो है यहां पे बताया गया, जैसे भगवान देवकी सुतः, कि भगवान जो है किसके पुत्र है? भगवान किसके पुत्र है? देव की। देह की पुत्र है, देह की पुत्र का ये वृंदावन में क्या काम? अचानक देव की पुत्र वृंदावन में कहां से आ गए? यशोदा पुत्र नहीं होना चाहिए, श्लोक गलत नहीं है भागवत में? श्लोक तो गलत नहीं होगा, सही भी नहीं लग रहा वैसे कुछ भी नहीं है, यशोदा का एक नाम देवकी भी है, सिंपल आंसर ठीक है। ब्राह्मण उपनिषद में आता है, ब्राह्मण ने देव की पुत्र, हाँ तो देव की पुत्र नहीं है, वो यशोदा पुत्र है एक्चुअली, यशोदा का एक नाम देवकी भी। खैर तो यहां दिखा रहे कि भगवान के जो है चरण स्पर्श करना चाहते, इसका मतलब क्या है? ये छिछोरा बन नहीं है इनमें, अभी छिछोरा बन नहीं है कि हाँ जाए सीधा जो है सीधा गले लगा ले। भगवान गले लगा सकते हैं, हम चरणों के लायक हैं, चरणों की धूलि, इसीलिए प्रभुपाद ने वो पिछला तात्पर्य दिया, आश्लीय सवाम आप आदरता विनष्टु माम, चाहे आप मेरा आलिंगन करें चाहे आप मुझे ठुकरा दें, मैं आपके चरणों में ही रहूंगा या रहूंगी। स्थित धूलि सदिशम विचिंतया, भगवान के जो माधुर्य रस के भक्त भी होते हैं, ये माधुर्य रस के भक्त है ना, चरम पराकाष्ठ है, वो भगवान का आलिंगन करने के लिए उतावले नहीं होते, वो अपने आप को भगवान के चरणों में ही रखते हैं, भगवान उनका आलिंगन करने के लिए उतावले होते हैं, तो वो भगवान का आलिंगन करते हैं। तो ये एटिकेट है, ये विनम, इसीलिए यहां पर तात्पर्य में विष्णु जागृति बाद ने पिछली बार बताया, उनके समक्ष उनमें विनयशीलता बढ़ गई, विनयशीलता ह्यूमिलिटी, जब किसी के अंदर ह्यूमिलिटी विनयशीलता बढ़ जाती है तो वो जो है गले से नहीं लिपटता, वो पैरों में गिरता है। बहुत अलग अंडरस्टैंडिंग है, तो यहीं पे समाप्त करेंगे, काफी समय हो चुका है, बच्चे बाहर इंतजार कर रहे हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, उपस्थित भक्तवृंद की, हिताई घोष सनात प्रेमानंदे हरिंद्र बोल, शुभ प्रभात की जय।